न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ, मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ, मैं देह से न्यारा
शांति। अगर मनसा सेवा करनी है, योग का अभ्यास करना है, तो कारणों का निवारण करना है और समस्या का समाधान करना है, जिसको बाबा ने दूसरे शब्द में कहा नो प्रॉब्लम की स्थिति। जीवन में कारण तो सभी के जीवन में है, समस्या हर एक के जीवन में है, क्योंकि कलयुग को कहा जाता है समस्या का युग। क्या क्या समस्या है? कोई किसी को पति तंग करता है, कोई किसी को पड़ोसी तंग करता है, कोई किसी का पैसा लेके जाता है वापिस नहीं देता, कोई किसी को शारीरिक प्रॉब्लम है, किसी को अपने बच्चे तंग करते हैं। इस तरह से हर एक को कोई ना कोई समस्या जरूर है, और इस समस्या के कारण नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, इस समस्या के कारण मन कमजोर है। तो इसीलिए हमें इन समस्या का समाधान करना है। जो निगेटिव चिंतन करता है या समस्या का चिंतन करता है, वो ज्ञान योग का चिंतन, आत्म चिंतन, मनन चिंतन नहीं कर पाएगा, वो अंतर्मुखी नहीं बन पाएगा, क्योंकि मन हमारा बिल्कुल फ्री चाहिए। अगर समस्या का चिंतन करेंगे, कारणों का चिंतन करेंगे, तो मन बिजी उसमें हो गया, तो फिर आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन कैसे करेंगे? इसलिए अगर हमें योगी बनना है, समस्याओं का समाधान करना है। और समस्या आती कहां से? हम दूसरे को दोषी बनाते हैं, इसके कारण ऐसा हो गया, इसके कारण ऐसा हो गया। वास्तव में समस्या हमारे ही कर्मों का फल है, समस्या हमारे ही कोई ना कोई जन्मों के कर्मों का फल है, समस्या किसी दूसरों ने नहीं दी। अगर आप करेले बोएंगे तो क्या उगेगा? करेले बोएंगे तो करेले ही उगेंगे। अगर करेला बोया है और कहेंगे इसको आम कब आएंगे, करेले को आम कभी भी नहीं आता। तो आज हमारे जीवन की जो समस्या है, भले हम कभी कहते कि भाई मैं तो इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैंने इसको कभी कुछ ऐसा किया नहीं, तो भी ये मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है? भले आप इस जन्म में उसके रास्ते में नहीं गए, लेकिन कभी ना कभी उसके रास्ते में आप जरूर गए हैं। इसलिए इस कर्म गति को हमें समझना बड़ा जरूरी है, और जो कर्म गति को समझेगा वही कारणों का निवारण कर सकता है, समस्या का समाधान कर सकता है। और जो समस्या का चिंतन करता है, निगेटिव चिंतन करता है, उसको अनेक प्रकार की बीमारी होने की संभावना है। आज दुनिया में भी जो बीमारी है, बीमारी का कारण क्या है? समस्या का चिंतन, जिसको आजकल दूसरी भाषा में कहा जाता है तनाव या टेंशन। जो ईर्ष्या वाले संकल्प करता है, ईर्ष्या करता है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारियां होती हैं। जो ईर्ष्या करेगा, और हर एक के अंदर ईर्ष्या आजकल होती है, इसका सम्मान होता है, इसको ही सब लोग पूछते हैं, मुझे कोई पूछता ही नहीं, ईर्ष्या करेंगे, पेट की बीमारी होंगी, एसिडिटी या कई अंदर के प्रॉब्लम। इसीलिए कहते ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? इसीलिए कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी है। आज किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बीती हुई बातों को कई याद करते हैं, कुछ और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन यह भी एक कारण है बीपी हाई होने का, ब्लड प्रेशर बढ़ने का, बीती हुई बातों को याद करते हैं। जो जितना बीती हुई बातों को याद करता है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। आज समझो आप नदी में नहाने के लिए गए, और फिर नहा के वापिस आए, फिर दोबारा नहाने के लिए गए तो पहला पानी कहां गया? पहला पानी तो आगे चला गया ना। अभी दोबारा नहाने के लिए गए वो दूसरा पानी आया है। तो इसी तरह किसी ने मुझे मेरे साथ गलत व्यवहार किया तो हम क्या करते हैं, उसके लिए वही भावना बना करके बैठते हैं, ये है ही ऐसा, इसने मेरे साथ ऐसा ही किया। उस व्यक्ति को देखते ही उसकी बीती हुई बातें याद आते हैं, उसके बीते हुए व्यवहार को याद करते हैं और उसे निगेटिव चिंतन चलता है और उसे निगेटिव थॉट चलते हैं और उससे बीपी हाई हो जाता है। इसीलिए बीती हुई बातों को हमें क्या करना है, भूलना है, बीती हुई बातों को याद नहीं करना है। अभी गीत बहुत सुंदर बज रहा था, किसने क्या कहा तो क्या हुआ, किसने कुछ कहा तो क्या हुआ, जो हुआ सब अच्छा हुआ, खुशी खो गई सब कुछ खो गया। इसीलिए आज हमारी खुशी चली जाती है, क्यों? कोई अपमान करता है, कोई निंदा करता है, किसी बीती हुई बातों को याद करते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, सदा ही सकारात्मक चिंतन करना है। आज किसी को शुगर हो जाते, शुगर क्यों हो जाते, जो दूसरों को अपने अंडर में रखने की कोशिश करता है, मैं ऑफिसर हूं, ये मेरे बिना पूछे कहीं भी न जाए, मैं इस घर का मालिक हूं, मेरे बिना पूछे कुछ भी न करे, और आजकल कोई किसी की बातें नहीं मानता, याद रखना है। और जब कोई बातें नहीं मानता तो कहेंगे मेरा कोई नहीं मानता, मैं क्या करूं। ये निगेटिव थॉट चलते चलते ऐसा एक शरीर में केमिकल उतरता है, क्योंकि निगेटिव थॉट से शरीर में केमिकल उतरता है और उसी केमिकल से बीमारी पैदा होते हैं। इसलिए हमें निगेटिव नहीं सोचना है। जब हमारे विचार जब फास्ट चलते हैं, निगेटिव चलते हैं, तो दिमाग क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और जिसका दिमाग गर्म हो जाता है उस समय शरीर में केमिकल्स उतरते हैं और उसी केमिकल से बीमारी होती है। इसीलिए कहावत बने, जिसका पाव गरम पेट नरम दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा, वहां डॉक्टर ने की कोई जरूरत नहीं। पाव कैसे चाहिए, पाव चाहिए गरम, पेट चाहिए नरम और दिमाग चाहिए ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा हो गया, पाव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। पाव ठंडे क्यों रहते हैं, क्योंकि पैदल करने की एक्सरसाइज करने की आदत ही खत्म हो गई, सुस्त हो गए, थोड़ा कहीं जाना है तो गाड़ी पर साइकिल पर या रिक्शा में जाएंगे, पैदल नहीं करेंगे। और एक्सरसाइज न करने से, पैदल न करने से पांव कैसे रहते हैं, ठंडे, और दिमाग रहता है गर्म, किसी ने कुछ कहा सहन नहीं होता, उसके कारण दिमाग गर्म रहता है और उसके कारण बीमारियां बढ़ती जा रही। तो इसीलिए हमें क्या करना है, दिमाग को सदा क्या करना है, ठंडा रखना है। और दिमाग को ठंडा रखने के लिए कारणों का क्या करना है, निवारण, समस्या का क्या करना है, समाधान। आज किसी को हड्डियां दर्द होते हैं, क्यों होते हैं, जो अभिमान में चलता है, अकड़ करके चलता है, उसकी हड्डियां दर्द होते हैं, मसल्स दर्द होते हैं। आज किसी को दूर का कम दिखाई पड़ता है, क्यों, गुस्सा करेंगे, गुस्सा करने से अंदर से जो आंख है, आंख की पुतली के ऊपर प्रेशर पड़ता है और उसे वो पुतली फैल जाते हैं, इसे दूर का कम दिखाई पड़ेगा। आज किसी को स्पॉन्डल दर्द होता है, स्पॉन्डलाइट दर्द होता है, क्यों, सब्जी लाने के लिए जा रहे हैं लेकिन देखेंगे वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे इधर उधर देखते हुए जाएंगे, और इधर उधर देखते रहेंगे तो आगे चल करके उसको ऐसी बीमारी होगी जिसे स्पॉन्डल दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो हमारी कोई ड्यूटी नहीं लगी इधर उधर देखने की, लेकिन आज एक दूसरों को देखने की आदत है, फिर आगे चल करके उसको ऐसा एक डॉक्टर पट्टी लगाता है, ना वो इधर देखेगा ना इधर, सीधा देखते हुए चलना पड़ेगा। फिर तो पहले से आदत क्या डालो, सीधा देखने की आदत डालो, इधर उधर को नहीं देखो। नहीं तो आज व्यक्ति के एक नेचर बने, क्या नेचर बने, दूसरों को देखने की। अब समझो एक ही काउंटर से भोजन लेंगे, लेकिन जब दूसरा सामने बैठता है उसके थाली में देखेंगे क्या क्या लाया उसने, भाई जहां से आपने लाया उसने भी कहां से लाया, वही से लाया, लेकिन दूसरे की थाली देखने की आदत। और जो दूसरों को देखता है वही तनाव में रहता है। इसलिए सभी जितनी भी बीमारी होता है उसका कारण है नेगेटिव थॉट्स, व्यर्थ चिंतन, कारणों का चिंतन, समस्या का चिंतन। इसीलिए हमें क्या करना है, समस्याओं का समाधान करना है। और जो समस्या का चिंतन करता है उसका मन कैसा रहता है, कारणों का चिंतन, समस्या का चिंतन करने वालों का मन भारी होता है, और भारी मन ऊपर उड़ नहीं सकता। कई योग में बैठते हैं, कहते हैं योग में मेरा मन लगता ही नहीं, मेरा परमधाम में मन टिकता ही नहीं। क्यों नहीं टिकता, मन भारी होता है तो भारी मन ऊपर कैसा जाएगा। अगर लोहे का एक मन लेकर के आप ऊपर फेंको तो लोहे का मन ऊपर जाएगा, एक मन दो मन। तो इसी तरह हम समस्या का चिंतन करके मन को कैसे बनाते हैं, मन को भारी बनाते हैं। इसलिए मन को हल्का रखो, तब जाकर के आपका मन जब भी योग में बैठेंगे तुरंत ऊपर चला जाएगा। आज मन परमधाम में क्यों नहीं जाता, क्योंकि मन को हम भारी बनाते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, ये कला सीखने मन को हल्का, जिसको बाबा कहते हैं बच्चे डबल लाइट, फरिश्ता कौन बन सकता है जिसका मन हल्का है। और जिसका मन हल्का है वो व्यवहार में भी हल्का होगा, जिसका मन भारी है उसका शरीर भी भारी होगा, उसको सुस्ती आएगी, उसको ज्यादा निंद्रा की जरूरत पड़ेगी। आज योग में नींद क्यों आते हैं, क्योंकि व्यर्थ चिंतन। जो व्यर्थ चिंतन करता है उसको स्वप्न भी व्यर्थ चलेंगे, सारा दिन भी व्यर्थ चिंतन करेगा, और वो सदा ही क्या हो जाएगा, सुस्त रहेगा। इसीलिए हमें क्या करना है, हल्के बनने के लिए समस्या का समाधान और कारणों का निवारण करना है। तो जीवन की समस्या आती कहां से, जैसे पता ना समस्या हमारे ही कर्मों का क्या है, फल है। हमने जरूर, आज मुझे कोई समस्या बनकर के मेरे सामने आता है तो जरूर मैंने भी उसके साथ ऐसा किया है। एक बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल आप लोगों को सुना करके कर्मों की घुई गति को स्पष्ट करते हैं। इस संसार में जितनी भी समस्या आ रहे हैं, कारण आ रहे हैं, वो है कर्म। अभी कुछ दिन पहले हमने एक मराठी मैगजीन में एक बहुत सुंदर आर्टिकल लिखा था, और उसमें एक सत्य घटना लिखी थी, और यह घटना मुझे बहुत अच्छी लगती है, और इसी घटना से मेरे जीवन में कई बातें स्पष्ट हो गई। तो इस बात को आप अच्छी तरह ध्यान से सुनना, और इससे घटना से आपको पता चलेगा कि आपके जीवन की जो समस्या है वो समस्या कहां से आ रही। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। तो उनके पास एक मेहमान आया, वैसा वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, वो होलसेल व्यापारी था। तो जब वो दिल्ली में आया तो उसने अपने साथ में करोड़ों रुपए लाया था, क्योंकि कुछ पुरानी पुराना हिसाब देना भी था और बहुत सारा सामान उसको खरीद करना था। लेकिन जब वो दिल्ली में आया तो दिल्ली के सब दुकान उसी समय बंद थे। तो उस व्यापारी को लगता है मैं बैठे बैठे क्या करूं, चलो मैंने आगरा कभी गया नहीं, आगरा कभी देखा नहीं, चलो मैं जाकर के आगरा देख के आता हूं। तो व्यापारी क्या करता, आगरा देखने के लिए गया। तो सारा दिन उस व्यापारी ने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को उस व्यापारी को सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते भी हमारे होटल बुक है। तो उस व्यापारी को लगता है मैं रात को कहां सो जाऊं, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाऊं तो मेरी बैग चोरी हो जाएगी, अगर कहीं स्टेशन पर सो जाऊं तो भी बैग चोरी हो जाएगी। तो अचानक उसको क्या याद आया, मेरा एक गरीब पति पत्नी मेहमान है, चलो मैं उनके पास जाता हूं। उनका एड्रेस भी था। वो व्यापारी क्या करता है, रिक्शा करके उस गरीब पति पत्नी के पास गया। तो जाकर के उसने उनके पास खाना खाया, उनके साथ बातें की, लेकिन सोने से पहले उसने क्या की, अपनी बैग खोली। जब उसने बैग खोली तो बैग के अंदर लाखों करोड़ रुपए थे। जब बैग खोली तो बैग के अंदर 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल उसने देखा, उस गरीब की पत्नी ने। तो गरीब की पत्नी को लगता है अरे इसके पास कितना सारा पैसा है, अगर इसमें से थोड़ा भी पैसा अगर हमारे पास आ जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो रात भर उस गरीब की पत्नी को क्या होते, नींद नहीं आती। तो 12-1 बजे क्या करते हैं, वो गरीब की पत्नी बाहर गई और बाहर जाकर के क्या करते हैं, बहुत बड़ा एक पत्थर लेके आते और पत्थर लाकर के वो जो सोया हुआ मेहमान था उस मेहमान के जोर से क्या करते, सिर में डाल देते। और जब सिर में डाला तो उसका क्या हो गया, सिर फट गया, जगह की वहीं की वहीं मर्डर हो गया। और मर्डर होते ही उसने बैग पकड़ करके क्या करते, पति को दिखाते। पति तो डर गया, कहा कि ये बात किसी को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, हमें जेल की सजा होगी। तो पति कहता है कि किसी को पता ही नहीं चलने देंगे, पत्नी कहते हैं किसी को पता ही नहीं चलने देंगे, अभी अभी हम क्या करते इसको जमुना नदी में डाल देते। तो गरीब की पत्नी ने क्या किया, वो पति पत्नी ने मिल करके दोनों ने उस मुर्दे को उठाया और रात को 2-3 बजे क्या किया, उसको उनके झोपड़पट्टी के पीछे जमुना नदी थी, उस जमुना नदी के अंदर उसको डाल दिया। और वापिस आकर के घर के अंदर लिपाई पुताई की, घर को साफ स्वच्छ किया, खून वगैरह लगा था वो ठीक। इस बात को उन्होंने पुलिस से छिपाया, लोगों से छिपाया, लेकिन कर्मों से कोई छिपा सकता है, इसीलिए एक भजन है, कर्म का लेका मिटे ने रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। अगर कोई गलत कर्म करके गांव छोड़ करके जाएगा, इतना ही नहीं वो शरीर छोड़ करके भी जाएगा, लेकिन किए हुए कर्म उसके पीछे पीछे आते हैं। आखिर उन्होंने क्या किया, उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, एक बिल्डिंग बना दी। इसके साथ साथ उन्होंने एक गाड़ी खरीद की, एक दुकान खोला, अपने लिए गहने बना दी, अच्छे ड्रेस सिलाई की। उन दोनों गरीब पति पत्नी की गरीबी दूर हो गई, लेकिन दोनों को कोई बच्चा वगैरह नहीं था, दोनों ही पति पत्नी थे। तो कुछ साल के बाद क्या होता है, दोनों को एक बच्चा पैदा हो गया। तो एक ही था, इसीलिए उस बच्चे को खिलाया पिलाया, उस बच्चे को काफी बड़ा किया, बच्चा कलेक्टर बनने जितना पढ़ाया उसको। बस उसको 15-20 दिन के बाद नौकरी लगने वाली थी, लेकिन उसके पहले क्या हो जाता है, वो बच्चा थोड़ा बीमार पड़ा। तो उनको लगता है कि गरीब पति पत्नी को उनको लगता है इस बच्चे को कुछ न हो जाए, अभी तो कलेक्टर बनने वाला है। तो उसको क्या किया, बहुत बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, जिसकी फीस काफी थी और उसी हॉस्पिटल का बहुत खर्चा हुआ और उस खर्चे के पीछे उनको गहने बेचने पड़े। सोचा बाद में ले लेंगे, बच्चा नौकरी लग जाएगा, बच्चा तो भी ठीक नहीं हुआ। आखिर उन्होंने क्या किया, जो गाड़ी ली थी वो बेची और सब बीमारी में पैसा लगाया, बच्चा तो भी ठीक नहीं हुआ। आखिर उन्होंने दुकान चालू किया था वो बंद किया और सब बीमारी में पैसा लगाया, बच्चा तो भी ठीक नहीं हुआ। आखिर उन्होंने जो मकान लिया था बनाया था वो बेचा और सब बीमारी में पैसा लगाया, तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। तो एक दिन वो बच्चा कहता है, पापा जी अपने को जो मिला था वो पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूं। तो बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? वही व्यापारी अपना पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में वहां जन्म लिया था। यह है कर्मों की घुई गति। अगर वो व्यक्ति कहे, हे भगवान मेरे जीवन में कितनी समस्या आई, मेरा बेटा बीमार पड़ा, देखो मेरी संपत्ति चली गई, हे भगवान कितनी समस्या दी, तो भगवान ने उसको समस्या दी? समस्या उसने अपने कर्मों से की, पैदा की। तो ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई, ये एग्जाम्पल क्यों सुनाया, आज आपके जीवन की भी जो समस्या है, आपको कोई पड़ोसी तंग कर रहा है, कोई ऑफिस वाला तंग कर रहा है, वो क्यों तंग कर रहा है? क्योंकि आपने भी कोई जन्मों में उसको पड़ोसी बनकर के तंग किया था, इसीलिए वो हिसाब लेने के लिए आपके पास आया है। अगर आपका कोई बच्चा आपका पैसा लुटा रहा है, गलत संग में जाकर के पूरा पैसा बर्बाद कर रहा है, यह भी आपको आपके ही कोई कर्मों का फल है। आज कोई किसी को पति बनकर के तंग करता है, वो पति कौन है जिसको उसने पति बनकर के कभी तंग किया था? आज कोई किसी को सास बनकर के तंग करते हैं, क्यों? क्योंकि उसने भी कभी उसको सास बनकर के तंग किया था, इसलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। इसलिए इस संसार में जो भी घटनाएं हो रहे हैं कर्मों के आधार से हो रहे हैं। आज कोई किसी को आतंकवादी बनकर के मार रहा है, कोई किसी को किसी का धन लेके जाता है वो वापिस नहीं दे रहा है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे कर्म गति को समझो। हमें अपने लिए भी साक्षी बनना है। अगर आपके जीवन में कोई समस्या आते हैं, अपने आप को समझाओ, हे आत्मा तुम्हारे कर्मों का फल है, तुम्हें चुप्त करना पड़ेगा, तुम अब चिंता क्यों कर रहे हैं? अपने लिए साक्षी बनो, घर के लिए साक्षी बनो, समाज में जो घटना होते है उसके लिए साक्षी बनो, तब जाकर के बीती को बिंदी लग सकती है, तब जाकर के फुल स्टॉप लग सकता है, तब कारणों का निवारण हो सकता है, तब संकल्प की बचत हो सकती है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस कर्म गति के गहराई को समझो। इस संसार में जो भी घटनाएं हो रही ऐसी वैसी नहीं हो रहे, कोई किसी का बच्चा बनकर के आता है, कोई किसी को पड़ोसी बनकर के आता है, ये परिवार बनता है, कर्मों के आधार से बनता है। इसलिए कर्म गति को समझना है। अभी तो कुछ नहीं आया, आगे चलकर के ऐसी घटनाएं आएगी, ऐसी बातें आएंगी, जिन्होंने इस कर्म गति को नहीं समझा वो ज्ञान होने के बाद भी दुखी रहेगा, परेशान रहेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे कर्म गति को समझो और सुखी बनो। समझो किसी ने गाली दी तो जिसको कर्म गति का ज्ञान है वो क्या समझेगा, अच्छा इसका भी बहुत दिन का बाकी था, आज सुख तो हो गया, ये समझेगा। और जिसको ज्ञान नहीं वो क्या समझेगा, इसने मुझे क्यों बोला, ये मेरे को ऐसा क्यों बोलता है, मैं भी इसको दिखाऊंगा, वो चिंतन करेगा, निगेटिव चिंतन करेगा। इसलिए अगर ज्ञान होने के बाद भी मेरा फुल स्टॉप नहीं लगता, इसका मतलब मैंने ज्ञान को समझा ही नहीं, कर्म गति को समझा ही नहीं, मैंने ड्रामा को समझा ही नहीं। और जो कारणों का निवारण नहीं करेगा, समस्या का समाधान नहीं करेगा, उसका योग कैसा लगेगा? कहते ना योग में माया आती है। योग में माया आती है मतलब कोई राक्षस आकर के हिलाता है? माया क्या है? माया मतलब किसने कुछ कहा है, किसने कुछ बोला है, वही बातें आपके बुद्धि को परमधाम में बाबा के पास जाने नहीं देती, उसी बातों का चिंतन कराते हैं। जब योग में बैठेंगे शुरू तो करेंगे, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, मेरे को ऐसे क्यों बोला, फिर कहेंगे कोई बात नहीं छोड़ दो, मैं आत्मा हूं, मैं शांत हूं, फिर कहेंगे मेरे को क्यों बोला, तो योग कैसा लगेगा? तो इसलिए योग का चिंतन करने के लिए समस्या का समाधान करो, कारणों का निवारण करो। ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में आने से समस्या आएंगी ऐसा नहीं है, समस्या आएंगी लेकिन जिसको ज्ञान है वो समस्या का समाधान करेगा। नहीं तो कई भाई बहने क्या सोचते हैं, मैं ओम शांति में जाता हूं, बाबा का ज्ञान सुनता हूं, तो भी मेरे जीवन में इतनी समस्या आती है, तो भी मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम आते हैं। ओम शांति में आते कब से आते हैं? 2-4 साल से आते हैं, 2-3 साल से आते हैं। पिछले जन्म में ओम शांति में थे और वो किए हुए कर्मों का फल कहां जाएगा? इसीलिए कईयों को डाउट आता है, मैं इतना दिन बाबा के ज्ञान में चलता हूं, इतनी सेवा करता हूं, सब कुछ करता हूं, तो भी मेरे जीवन में कितनी समस्या है, तो भी देखो मैं बीमार पड़ता हूं, मैं ये होता हूं। ये आपको चुक्त करना पड़ेगा। याद रखना है, जब तक आत्माएं हिसाब किताब चुक्त नहीं करेंगे तब तक कोई भी वापिस घर जा नहीं सकता। इस धरती पर आकर के हमारे जितने भी विकर्म बने, इस विकर्मों को हमें चुक्त करना पड़ेगा। और चुक्त करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है योग लगा करके। जितना योग लगाएंगे उतना हमारे अनेक जन्मों के केवे विकर्म पाप कर्म खत्म हो जाते हैं, हिसाब किताब खत्म हो जाते हैं। इसीलिए बाबा क्यों कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, मुझे याद करो, क्योंकि जन्म जन्मांतर के हमारे बहुत सारे विकर्म बने हैं। समझो कोई जन्म में आप राजा बने होंगे, कोई जन्म में आप राजा थे और किसी मंत्री ने आपको आकर के समाचार सुनाया कि इस व्यक्ति ने ऐसा ऐसा गलत काम किया, जबकि उस व्यक्ति ने गलत काम नहीं किया था, लेकिन उस मंत्री ने सुनी सुनाई बातों को आकर के आपको सुनाया और आपने उस मंत्री की बातें सुन करके क्या क्या निर्णय लिया कि इसको फांसी दिया जाए, और आपने फांसी दी तो उस व्यक्ति के मन में क्या आएगा, ये राजा है क्या, क्या है, मैं भी इसको दिखाऊंगा। फिर वही व्यक्ति कोई ना कोई जन्मों में आपका प्रतिद्वंदी बन करके आकर के आपको कुछ ना कुछ परेशान करता है। कभी आप राजा बने होंगे, कोई क्या बने होंगे, कभी किसी को तंग किया होगा, परेशान किया होगा, तो कितने सारे जन्मों के हमारे विकर्म हैं, वो कहां जाएंगे? इसीलिए बाबा कहते बच्चे जितना आप योग लगाएंगे, योग लगाने से आपके विकर्म क्या हो जाएंगे, दग्ध हो जाएंगे। इसीलिए विकर्म को खत्म करने का एक तरीका कौन सा है, योग। दूसरा तरीका है सहन करना। सहन करने से भी हमारे विकर्म विनाश हो जाते, याद रखना है। आपके सामने जितनी समस्या आती है, जितनी बातें आती हैं, जितना उसको सहन करेंगे उतने आपके विकर्म क्या होते हैं, विनाश हो जाते हैं। समस्या की बातों को सहन करो तो भी आपके विकर्म विनाश हो गए। इसीलिए उसको चिंतन नहीं करो, बदला नहीं लो, लेकिन क्षमा भाव, रहम भाव, तब जाकर के वो विकर्म विनाश हो जाते हैं। और तीसरी बात है विकर्म को खत्म करने का अगर आपने योग नहीं लगाया, सहन नहीं किया। तीसरी बात है धर्मराज की पुरी। तो धर्मराज पुरी क्या है? ये जो बाबा ने ड्रामा में विनाश रखा हुआ है, वो विनाश किसी लिए रखा है? विनाश में भी हमारे जितने भी पाप कर्म है वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन विनाश के पाप कर्म में चुप्त करने में वहां पद नहीं मिलने वाला है। और जो विनाश के समय जो पाप कर्म खत्म करेगा अर्थात विनाश की सजा भोगेगा, उस समय वो खुद को उसको रोना पड़ेगा, और जो खुद रोता है वो रोने वालों को सहयोग कैसा देगा? अगर विनाश के समय हम रोएंगे तो रोने वालों को हम समझाएंगे कैसे, उनको सांत्वना कैसे देंगे? इसीलिए बाबा कहते बच्चे विनाश से पहले योग लगा करके अपने विकर्म को विनाश करो, सहन करके विकर्म को विनाश करो। तो जो सहन करके और योग लगा करके अपने विकर्म को विनाश करता है, विनाश काल में उसको सेवा करने का बहुत चांस मिलेगा। अनेक परिवार की परिवार रोएंगे तो उनको सकास देने का आप काम कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, अब अपने विकर्म को खत्म करना है, और उसके लिए समस्याओं का समाधान करके योगी बनना है, और जीवन में छोटी छोटी बातें आती हैं उसको सहन करना है, और उसके लिए कर्मों की घुई गति को याद रखना है। और वास्तव में देखा जाए तो जीवन की जो समस्या आती है, अगर जीवन में समस्या ना आती तो आपका कभी भला होता? वास्तव में भाग्यशाली आत्मा वो है जिनके जीवन में समस्या ज्यादा आती है। सत्युग में उनका पद ऊंचा होगा जिसके जीवन में समस्या ज्यादा आई है। आप जीवन में पीछे मुड़ करके देखो, अगर आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आई तो आपका कल्याण कभी भी नहीं होगा। इसलिए बाबा ने ड्रामा अनुसार हमारे जीवन में समस्याएं क्यों रखी है, क्योंकि समस्या हमें अच्छाई की तरफ लेके जाते हैं। गीता का सार क्या है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा। समस्याओं में कल्याण है। अगर जीवन में समस्या ना आती हमारा कल्याण कभी ना होता। इसीलिए समस्या का समाधान करने का तरीका है समस्या के प्रति पॉजिटिव दृष्टिकोण बनाओ, समस्या जो क्रिएट करते हैं उनके प्रति भी पॉजिटिव दृष्टिकोण बनाओ। लेकिन आज हम क्या करते हैं, जो मेरे जीवन में जो समस्या पैदा करता है उसके लिए हमारा दृष्टिकोण कैसा है? निगेटिव। उसके लिए बदवाई देते हैं, उसके लिए अशुभ चिंतन करते हैं, उसे बात नहीं करते हैं, और उसको हम अपना दुश्मन मानते हैं, और इसीलिए योग कैसा लगेगा? उस व्यक्ति के प्रति हमारा हमारे बुद्धि में घृणा भाव नफरत भाव बैठेगा, उसके लिए बुद्धि असोच्य बन जाएगी, तो कैसा योग लगेगा? इसीलिए बाबा कहते बच्चे समस्या क्रिएट करने वाला आपका दुश्मन नहीं, वो आपका दोस्त है। एक रामायण का बहुत सुंदर एग्जाम्पल आपको सुनाता हूं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने क्या किया, कई कई को दो चार उल्टी बातें सुनाई। क्या सुनाया? कहा कि तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को राजा बनाने के बजाय किसको राजा बना रहे, राम को राजा बना रहे। किसने सुनाया? मंत्रा ने कैकेयी को सुनाया। और कैकेयी क्या करते हैं, इन बातों को सुन करके, उल्टी बातों को सुन करके क्या किया, राम को राजा बनाने के बजाय उसने क्या निर्णय किया, 14 वर्ष वनवास। तो उसको वो बातें सुन करके क्या करते हैं, वनवा में भेजने का फाइनल करते हैं। और वनवास में भेजने के कारण, अपने पुत्रों के वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। उसके साथ साथ उनको जंगलों में जाना पड़ा, खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, ये सब किसके कारण हुआ? मंत्र के कारण। तो मंत्र को जो भी देखेगा उसकी भावना कैसी चलेगी, अच्छी या बुरी? जब मैं बचपन में, जब ज्ञान से पहले मैं रामायण देखता था, जब रामायण देखता था राम, उसमें जब स्क्रीन में जब मंत्र आती थी डंडा लेकर के, वो बुढ़िया उसका पार्ट दिखाते ना, बुढ़िया है और डंडा लेकर के जा रहे, उसको आते ही सामने में कहता था इसको निकालो भाई, ये तो बड़ी खराब है, राम के लिए कितना गलत व्यवहार किया उसने, राम के लिए 14 वर्ष वनवास में भेजा। मेरी खुद की भी उसके लिए नफरत की भावना थी। लेकिन एक दिन मैंने ऐसा ही चिंतन कर रहा था तो उसी समय मुझे लगा कि मंत्रा ने कितना अच्छा राम के लिए किया। अगर मंत्रा ऐसा काम ना करती तो राम राजा नहीं बनता। अगर मंत्रा रात के समय ना आती तो दूसरे दिन राम क्या बनने वाला था? राजा। अगर वो राजा बनता तो जंगल में जाता? नहीं जाता। अगर जंगल में नहीं जाता तो सीता की चोरी होती? अगर सीता की चोरी ना होती तो रावण को मारता? अगर रावण को ना मारता तो राम की महिमा कौन गाता? तो राम को महिमा योग्य किसने बनाया? किसने बनाया? मंत्रा ने। तो राम मंत्रा को दुआ देगा या बद्दुआ देगा? दुआ देगा। ये है सकारात्मक दृष्टिकोण। तो इसी तरह बाबा ने भी ड्रामानुसार हर ब्राह्मण के पास एक दो मंत्र रखी है, हर एक के जीवन में एक दो मंत्र है। लेकिन आज जो हम परेशान है उसी मंत्र के कारण परेशान है। इसी भट्टी से आप उस मंत्र के लिए दृष्टिकोण पॉजिटिव बना दो। आप अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती तो राम को हनुमान, अंगद, ऋषि, मुनि मिलते सब, ये सब किसकी दौलत थी? मंत्रा की दौलत थी। अगर मंत्रा ना आती तो रामायण में इतने उसको लोग न मिलते, ना उसकी महिमा होती। इसीलिए मंत्रा का बड़ा धन्यवाद। इसी तरह आज आपके जीवन में भी, आज तक जीवन में जो भी मंत्राएं आई, अगर वो जीवन में मंत्राएं ना आती, वो तंग ना करती, तो आपके जीवन में भी देखो, आज आपको इतना अच्छा बाबा मिला, इतना अच्छा ज्ञान मिला, इतना अच्छा परिवार मिला, किसके कारण? आज तक जिन मंत्राओं ने तंग किया, परेशान किया, विघ्न डाला, उन सब के कारण। इसीलिए कभी शांति से बैठ करके आज जब योग में बैठेंगे तो जिन मंत्राओं ने आपको परेशान किया, जिन लोगों ने आपको तंग किया, उन सभी को थैंक्स दो। उनको कहो कि अगले कल्प में भी आप हमें तंग करने के लिए जरूर आना, क्योंकि आप लोगों के कारण हमारा कितना भला हो गया। यह है समस्या का समाधान, यह है कारणों का निवारण। आज तक जो जो मंत्राएं आपके जीवन में आई, उन सभी ने आपका क्या किया? भला किया। और अभी भी आगे चल करके जो भी मंत्राएं आएंगी वो भी आपका भला करने वाली है। एक घटना आपको सुनाता हूं, एक प्रैक्टिकल घटना है। एक अज्ञान काल में एक माताजी थी, वो बहुत गुस्सा करने वाली थी, बहुत गुस्सा करती थी। तो एक दिन उसका एक बच्चा गुस्सा कर रहा था, छोटा सा बच्चा था, उसको कितना भी समझाए तो भी नहीं समझ रहा था। तो उस माताजी को इतना गुस्सा आया और गुस्से गुस्से से उसने क्या करते, अपना पांव उठा करके उस बच्चों का गला दबा करके मार रही थी। जब किसी ने उसको देखा तो माताजी को खींच कर निकाला, कहा कि तुम मां हो या क्या हो, तुम ऐसा गलत काम कर रहे हो। तो माताजी को इतना फीलिंग आई, उसको लगता है कि मैं मां होते हुए भी इतना गलत काम कर रही हूं। तो उस दूसरी माताजी ने उसको समझाया, तुम भक्ति वगैरह नहीं करती ना, इसीलिए तुम्हें गुस्सा आता है। तो भक्ति करने के लिए वो माताजी क्या करते, रोज एक मंदिर में जाना शुरू करते हैं। तो रोज जब मंदिर में जाते हैं तो 2-3 साल तक उस मंदिर में भक्ति करने के लिए जाते हैं। तो एक दिन उसी मंदिर में ब्रह्मा कुमारी की एक प्रदर्शन लगी थी, तो उसने वो प्रदर्शन देखी, उसको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद वो माताजी क्या करते हैं, वो बहन जी ने उसको समझाया कि आप रोज सेंटर पर आया करो, 7 दिन का हमारा कोर्स होता है वो करो। तो उस माताजी ने क्या किया, वो 7 दिन का कोर्स किया, उसको बड़ा अच्छा लगा, फिर आगे भी वो ज्ञान में चलने लगी। तो 2 साल के बाद वो मधुवन में आई बाबा से मिलने के लिए। तो उस समय की बात है, वो ओम शांति भवन में बाबा आते थे, तो ओम शांति भवन में बाबा से सामने मिल रही थी। तो माताजी क्या करते हैं, बाबा को एक क्वेश्चन पूछते हैं, कहते बाबा मेरा योगी नहीं लगता। तो बाबा ने पूछा कि क्यों, कहते बाबा मुझे, मैंने एक जीवन में बहुत गलत काम किया वो मुझे याद आता है। तो बाबा ने कहा कौन सा गलत काम किया, कहते कि मैं एक बार मैंने बच्चों को रगड़ करके मार रही थी, गुस्सा कर रही थी, वो मुझे याद आता है, मैं यहां आने के लायक नहीं हूं, मैं गुस्सा करती हूं। तो बाबा ने उस माताजी को क्या जवाब दिया होगा, बाबा ने कहा कि बच्ची तुमने जो किया वो अच्छा किया, अगर तुम वो काम ना करती तो यहां भी ना आती, तुमने जो किया अच्छा किया। इसी तरह अगर वो माताजी वो काम ना करती तो ना मंदिर में जाती, अगर मंदिर में ना जाती तो प्रदर्शनी ना मिलती, अगर प्रदर्शनी ना देखती तो सेंटर पर ना आती, सेंटर पर ना आती तो भगवान से भी ना मिलती। तो उसने जो किया, क्योंकि उस आत्मा के साथ उसका कोई हिसाब किताब था, वो चुक्त हो गया। इसी तरह आज हमारे जीवन में भी जो भी घटनाएं आती है, कहते हैं ना पापी का पाप का घड़ा भरने के बाद वो क्या होता है, वो फट जाता है, फिर भगवान उसको मिलता है। तो इसी तरह आज हम जो भी करते हैं, हमें करना ही था, आज तक जीवन में जो भी घटना आया किया, अगर वो ना करते तो यहां भी ना होते। इसीलिए जो हुआ अच्छा हुआ, और जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, इसीलिए हमें समस्या का समाधान करना है। अगर छोटा सा बच्चा परीक्षा के समय रोएगा, मम्मी मुझे टीचर बहुत मारता है, मैं परीक्षा नहीं दूंगा, अगर वो बच्चा परीक्षा ना देता उसको नौकरी लगेगी? जितना वो परीक्षा देता है उतना उसको नौकरी लगती है। तो इसी तरह आज हम भी अपने जीवन में जितनी भी समस्या का परीक्षा देते हैं, जब बाबा के सामने रोएंगे, बाबा मुझे बहुत समस्या आते हैं, मुझे बहुत विघ्न आता है, तो बाबा को लगेगा भी कोई बात नहीं, रहम करेगा। अगर आपके सामने कोई परीक्षा नहीं भेजेगा, अगर आप परीक्षा नहीं देंगे तो आपको भविष्य का पद ऊंचा नहीं मिलेगा। इसीलिए ब्राह्मण वो महान भाग्यशाली हैं जिनके जीवन में परीक्षाएं ज्यादा आती हैं, क्योंकि परीक्षाएं समस्याएं हमें उपराम बनाती हैं, परीक्षा हमें बेहद के वैरागी बनाती हैं। इसीलिए परीक्षा से समस्या से कभी भी घबराओ नहीं। अगर सागर में कोई नौका है उसको तूफान ना आए वो आगे कैसी जाएगी, तूफान आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए समस्याओं का समाधान करो, समस्या में कभी भी घबराओ नहीं, समस्या में कभी भी रोना नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, समस्या में रोते हैं। आप लोग जब मिठाई खाते हैं, जब दिवाली मनाते हैं तो दिवाली में क्या करते हैं, मिठाई भी खाते हैं और साथ में नमकीन भी खाते हैं। केवल कोई मिठाई खाएगा तो कहेंगे नहीं मुंह थोड़ा मीठा मीठा हो गया, और जो ज्यादा मीठा पसंद करता है उसको शुगर भी हो जाती है, और जिसको शुगर होते है उसकी निशानी क्या है, वो सुस्त बन जाता है, एक्टिव नहीं रहता। इसलिए मिठाई के साथ क्या खाते हैं, नमकीन भी खाते हैं। तो आपकी कोई महिमा करते हैं, महिमा है मिठाई, और ग्लानी क्या है, नमकीन है। तो जैसे मिठाई खाता हो वैसे नमकीन भी खाना पसंद करो, लेकिन हम क्या करते हैं, मिठाई बहुत पसंद करते हैं। अगर नमकीन कोई देता भी है, कोई कड़वी बातें बोलता भी है, हम उसके पास नहीं जाएंगे। अगर कोई महिमा करते है उसके पास जाएंगे, कहेंगे तुम बहुत अच्छे करते हो, तुम बहुत अच्छे हो, और वो महिमा करते करते आपको सुस्त बनाता है। ग्लानि हमें जगाती है, महिमा हमें सुलाती है। इसीलिए ग्लानि से कभी भी घबराना नहीं है। इसीलिए कबीर का एक दुआ है ना, निंदक हमारे कुछ ऐसा दुआ है, वो बिना साबुन से आपको क्या कर रहा है, साफ कर रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, निंदक से दूर रहते हैं। लेकिन नहीं, निंदक से के नजदीक जाओ। निंदक आपके अंदर की बुराई बताता है, इसलिए हमें समस्या से घबराना नहीं। जो समस्या पैदा करता है उसके प्रति अपना दृष्टिकोण पॉजिटिव बनाना है। अगर जीवन में समस्या ना आती, हमारा कल्याण कभी ना होता। हमारा काम है प्रभु का चिंतन करना, और प्रभु का काम है भक्तों के जीवन में जो समस्या आते हैं, जो विघ्न आते हैं, उसका समाधान करना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम समस्या का चिंतन करते हैं, फिर प्रभु क्या करेगा, अच्छा ये मैं या मेरा काम ये कर रहा है, मैं बीच में क्यों जाऊं। बाबा का काम हमें नहीं करना है। बाबा ने जो हमें काम दिया है, क्या काम दिया है, बच्चे तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारे जीवन में जो कांटे आएंगे, जो खड्डे आएंगे, उसे मैं बचा कर लेके जाऊंगा। आप अपनी जीवन नैया के डोर बाबा के हाथ में दो, अपने जीवन के घोड़े की लगाम किसके हाथ दो, बाबा के हाथ में दो। अगर कृष्ण ने लगाम पकड़ी है और अर्जुन को अपने अर्जुन ने लगाम पकड़ी है और कृष्ण को कह रहे हैं, अर्जुन मेरा रथ आप खड्डे में क्यों लेके जा रहे हैं, तो कृष्ण क्या कहेगा, अरे तुमने लगाम पकड़े, तुम जाने, तुम्हारा रथ जाने। इसीलिए हम क्या करते हैं, समस्या का चिंतन करते हैं, फिर कहते बाबा ऐसा होता है वैसा होता है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरा चिंतन करो, मैं तुम्हें समस्या से बचाऊंगा। इसलिए अगर कोई समस्या क्रिएट भी करता है आपके लिए, कोई खड्डा भी खोदता है, लेकिन अगर बाबा आपके साथ में है, उसी खड्डे से भी आपकी बुराई अच्छाई कर देगा। कभी ये नहीं सोचो कि ये मेरा बुरा कर रहा है, ये मेरे लिए ऐसा कर रहा है। आपका उस विघ्नों के प्रति दृष्टिकोण पॉजिटिव चाहिए। एक रामायण महाभारत की बहुत सुंदर घटना आपको सुनाता हूं। ये बचपन में पांडव की बचपन की ये बात है। पांडव छोटे बच्चे थे, और जब पांडव छोटे बच्चे थे गुरुकुल में रहते थे, तो शकुनी हमेशा दुर्योधन को उल्टी बातें सुनाता है। कहते हैं पांडव में ताकत है, क्यों ताकत है, कहते हैं कि दुर्योधन को कहता है तुम मुट्ठी बनाओ, जो मुट्ठी बनाता है। कहते हैं मुट्ठी कितनी उंगली से बनते हैं, कहते हैं पांच उंगली से बनते हैं। कहते हैं एक उंगली को काटो तो क्या मुट्ठी बनेगी, तो कहते हैं नहीं बनेगी, ताकत थोड़ी कम हो जाएगी। फिर दूसरी उंगली काटो मुट्ठी बनेगी, कहते हैं नहीं। इसी तरह पांडव में एकता है, पांडव पांच है, एक एक उंगली को काटो, शकुनी दुर्योधन को सिखाता है। तो दुर्योधन क्या करता है, इसका चिंतन करता है कि पांडव को एक एक को कैसे काटे। तो क्या करता है, जब गुरुकुल में रहते थे तो एक बार क्या होता है, अर्जुन ने भीम की खीर पी लिया, उसी समय दुर्योधन उसका लाभ लेता है। और दुर्योधन क्या करता है, भीम को कहता है भीम भैया तुम्हारे भाइयों का तुम्हारे से कोई प्यार नहीं है, देखो तुम्हारी खीर अर्जुन पी लिया, चलो मैं अपने शिविर में तुमको खीर बना करके पिलाऊंगा। और वैसा भीम तो पेटू था, मोटू था, वो खाने पीने में थोड़ा ज्यादा लालची था। वो लालच में आकर के क्या करता है, वो खीर पीने के लिए उसके शिविर में चला गया। और जब दुर्योधन क्या करता है, खीर बनाता है, उसको उस समय उसके मामा की बात याद आते हैं, पांडव पांच है, एक एक उंगली को काटो, तो उसी समय क्या करता है, उसी खीर में जहर डालता है और जहर डाल करके उसको क्या करता है, पीने के लिए देता है। लेकिन भीम का दृष्टिकोण क्या था, ये खीर है मैं पी रहा हूं, उसके लिए पॉजिटिव दृष्टिकोण था खीर के प्रति। उसने क्या किया, पूरा पतीला लेकर के पीने के लिए शुरुआत करता है। बीच में पूछता है दुर्योधन को, अरे तुम भी थोड़ा पी लो। तो उस समय दुर्योधन कहता है, अरे तुम पी लो, हम तो कभी भी बना सकते, तुम्हारे जैसे बंधन में थोड़ी है। और वो पेटू था इसलिए उसने पी लिया काफी, और पीने के बाद जब पेट भर गया तो क्या करता है, उसको सुस्ती आ गई, सो गया। और जब सो गया तो जहर था वो पेट में घुल गया, और घुलने के कारण क्या हो गया, वो बेहोश हो गया। और जब उसने दुर्योधन ने दुशासन ने हिला करके देखा तो सोचा कि यह मर गया। और उस समय दुर्योधन कहता है, अच्छा पांडव की एक उंगली आज कट गई। और उसको क्या किया, केले के पत्ते में लपेट करके उसको, बाजू में नदी थी उस नदी के अंदर उसको फेंक दिया। और कहते हो नीचे 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 बहता हुआ चला गया। और वहां उनके नाना काका चाचा आए और उन्होंने देखा कोई लड़का बहते हुए जा रहा है। वहां से उसने उनको उठाया लाया, जब देखा ये भीम है तो उसको होश में लाया। और जब वो होश में आया उसको पूछा कि तुमने नदी में कैसा गिर गया, तो भीम कहता है कि मैं नदी में नहीं गिरा था, मैं तो खीर पी रहा था। तो कहा कि खीर कौन पिला रहा था, कौन दिया, तो कहा कि दुर्योधन भैया ने दिया। तो समझ गए कि दाल में जरूर कुछ काला है। और उसी उन्होंने क्या किया, अमृत के प्याले पिलाए, और एक अमृत के प्याले में 18 हाथी की ताकत थी। और उसी खीर पी करके उस भीम को 18 हाथी की ताकत आ गई, कई हाथी के 4-5 प्याले उसने अमृत के पिए और कई हाथियों की ताकत आई और भीम शक्तिशाली बना। और उसी शक्ति से किसको मारा, उसी दुर्योधन को मारा अंत में। तो देखो जहर पिलाने में उसका क्या हो गया, कल्याण हुआ ना। अगर वो जहर ना पिलाता वो नदी में ना जाता, नदी में ना जाता तो इतनी हाथी की ताकत नहीं आती, अगर वो ताकत ना आती तो दुर्योधन को मारता। इसीलिए अगर कोई आपके जीवन में कोई खड्डा खोदता है, आपकी कोई बुराई करता है, उसमें भी आपका कोई ना कोई कल्याण है। इसीलिए आप अपने विघ्नों के प्रति, अपने समस्या के प्रति पॉजिटिव दृष्टिकोण बनाओ। महाभारत में और एक घटना आती है, जब युद्ध की तैयारी होती है उसी समय अर्जुन क्या करता है, रात को जाता है, रात में जाकर के वो हथियारों को धार लगाता है। और जब धार लगाता है अंधेरे में, बहुत गुस्से से कहता है कि मैं आज उस दुर्योधन को कभी नहीं छोड़ूंगा करके जोर से चिल्लाता है। और उस समय पीछे से कृष्ण उठ करके आता है और पीछे से देखता है वो कितना गुस्सा कर रहा है। और उस समय अर्जुन को समझाता है, हे पार्थ तुम अपने क्रोध अग्नि को भड़काओ, ये क्रोध अग्नि तुम्हें युद्ध में काम आएगी। क्रोध विकार बुरा नहीं है, क्रोध करो लेकिन किसके ऊपर, अपने बुराई के ऊपर करो। इसी तरह बाबा कहते हैं, बच्चे तुम भी क्रोध करो लेकिन किसके ऊपर, अपने बुराई के ऊपर करो। कभी कभी ऐसा क्रोध करो, आज मैं काम विकार को कभी नहीं छोड़ूंगा, आज उसको मार के छोड़ूंगा, आज इस बुराई को कभी नहीं छोड़ूंगा। तो जितना ये विकारों के ऊपर, बुराई के ऊपर क्रोध करेंगे उतना आपका युद्ध में आपको काम आएगा। बाबा कहते बच्चे आप दूसरे के लिए क्या बनो, शीतला बनो, अपने ऊपर काली बनो। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने ऊपर शीतला बनते, मैंने कोई बुराई की, हाँ मैं ठीक हूं, उसके कारण ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, और दूसरे ने कुछ किया, काली बन करके बरसते उसके ऊपर। तो अपने लिए शीतला बनो, काली बनो, और दूसरे के लिए शीतला बनो। लोभ करो ज्ञान रत्नों का, करो मोह रखो, किसमें रखो, एक बाबा में मोह रखो। अभिमानी बनो लेकिन आत्माभिमानी बनो, काम मिलन मनाओ लेकिन किससे मनाओ, बाबा से मिलन मनाओ। जितना बाबा से मिलन मनाएंगे काम विकार खत्म हो जाएगा, जितना क्रोध अपने ऊपर करेंगे उतना ये जो क्रोध है स्थूल रूप का वो खत्म हो जाएगा। इस तरह से विकार, विकारों को परिवर्तन करो। इसीलिए हमें समस्या का क्या करना है, समाधान करना है, समस्या के प्रति अपना दृष्टिकोण पॉजिटिव बनाना है। जीवन में जो भी समस्या आते हैं कल्याण के लिए आते हैं। और एक आपको घटना सुनाता हूं, अगर समस्या डालने वाले आपके जीवन में ना होते आपका कल्याण कभी ना होता। और जो ऐसा दृष्टिकोण बनाता है वही जीरो बन सकता है। 18 जनवरी की बाबा की मुरली थी, 40 वर्ष के उपलक्ष्य में शुभ चिंतन बनो, चिंतक बनो, शुभ चिंतन करो, शुभ वृत्ति से शुभ वायुमंडल बनाओ। जो समस्या का समाधान करना जानता है वही शुभ चिंतक कर सकता है, वही शुभ चिंतन कर सकता है। मुरली के चिंतन को, सोमानों को चिंतन को, आत्म चिंतन को, परमात्मा चिंतन को कहेंगे शुभ चिंतन। किसी के व्यर्थ चिंतन को, पर चिंतन को, किसी के बुराई को, बीते हुए व्यवहार को जो याद करता उसको कहेंगे अशुभ चिंतन। और जो अशुभ चिंतन करता है वह अशुभ चिंतक बनेगा, और जो अशुभ चिंतक बनता है उसकी वृत्ति अशुभ बनती है, और जिसकी वृत्ति अशुभ है वो वायुमंडल भी अशुभ फैलाता है, और जो वायुमंडल को अशुभ फैलाता है वो जीरो नहीं बन सकता, आत्माभिमानी नहीं बन सकता। और जो आत्माभिमानी नहीं बनेगा, जीरो नहीं बनेगा, वो ड्रामा में हीरो नहीं बन सकता। इसलिए अगर हीरो बनना है, ऊंच पद प्राप्त करना है, समस्या के प्रति दृष्टिकोण पॉजिटिव बनाओ, तब आपका चिंतन शुभ चलेगा। इसीलिए इसी भट्टी से हमें समस्या का समाधान करना है। बाबा को धन्यवाद दो, बाबा को तो और कहो, बाबा मेरे जीवन में आज समस्या भेज देना, मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स भेज देना। और प्रॉब्लम का चिंतन कौन करता है, मन करता है। तो मन को ऑर्डर बना दो, हे मन मैं राजा बैठा हूं, तुम्हें सोचने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आज क्या हो गया, मन सोचता है, मन चिंतन करता है। समझो कोई पड़ोसनी है, और उसी पड़ोसनी को किसी माता ने आकर के गाली दी, उस समय उस माताजी का कोई बच्चा भी है, अगर समझो कुछ वो बच्चा जाकर के माताजी को कहेगा मेरे को आप क्यों बोला ऐसा, मेरे मम्मी को ऐसा क्यों बोला, तो माताजी क्या कहेगी, बेटा उसने मुझे बोला, तुम कुछ नहीं बोलो, मैं बैठी हूं। अगर कोई गाली देता है, गाली किसको देता है, आत्मा को देता है या मन को देता है, मालिक कौन है शरीर का, आत्मा है। लेकिन मन रूपी बच्चा क्या बोलता है, उसने मुझे क्यों बोला, वो मुझे ऐसा क्यों बोलता है। उस समय आत्मा रूपी मां का मन रूपी बच्चों को समझाना का फर्ज है, हे मन उसने मुझे बोला, तुम चिंता नहीं करो। तो मन को अस्वच्छ स्थिति में लाना है, मन को कहो कि तुम समस्या का चिंतन नहीं करो, समस्या का चिंतन मैं देख लूंगा, तुम्हें सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए हमें समस्या का समाधान करना है। तो समस्या जो क्रिएट करता है उसके प्रति अपना दृष्टिकोण पॉजिटिव बनाओ तो मैं घटना सुनाने जा रहा था। एक परिवार था जिस परिवार में दो बच्चे थे, एक बाप था और एक माता जी थी, बस तीन चार का एक परिवार था। तो उस परिवार में कोई बच्चे छोटे थे तो बाप क्या करता है, अपनी थोड़ी सी खेती थी और उस खेती के अंदर पेड़ लगाए थे, फलों के पेड़। तो उसी ताजे ताजे फलों को क्या करते हैं, बेचते बाजार में और जो भी पैसा आता है उसे दाल चावल रोटी ला करके अपना शरीर का निर्वाह चलाते हैं। ऐसा कई दिन तक बीतता है। तो बच्चे थोड़े बड़े हो गए, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए अमेरिका में भेजा। बच्चे पढ़ लिख करके वापिस आए और वापिस आकर के नौकरी करने के बजाय वो क्या करते हैं, अपने बाप को मदद करते हैं, वही काम करते हैं, खेती में जाते हैं, फलों को तोड़ते हैं और ला करके बाजार में बेचते हैं और जो भी सामान खरीद करके क्या करते हैं, अपना घर चलाते हैं। तो एक उनका मेहमान था, उस मेहमान को लगा इनके तो अभी बच्चे बड़े हो गए होंगे, उन्होंने बिल्डिंग बनाई होंगी, बहुत बड़ा बंगला बनाया होगा, चलो मैं उनको देखने के लिए जाता हूं। वो मेहमान क्या करता है, उनको देखने के लिए आता है, लेकिन उन्होंने क्या देखा, उनका वही पुराना मकान, छोटा सा झोपड़पट्टी है और वही चल रहा है। उनको लगता है कि ये ऐसा क्या करते हैं। तो उसने दो चार दिन रह करके उनको देखा नजदीक से, तो क्या देखा, रोज सवेरे उठते हैं वो, खेती के फल को तोड़ते हैं और बाजार में बेचते हैं और वही पैसा ला करके अपना घर चलाते हैं। तो उस मेहमान को गुस्सा आता है और रात को जल्दी उठ करके वहां से चला जाता है और जाकर के खेती में जितने भी फलों के पेड़ लगे थे वो तोड़ करके क्या करता है, तहस महस करके फेंक देता है और अपने घर में निकल जाता है। तो रोज की तरह वो परिवार में बाप बच्चे उठे और खेती में गए। जब खेती में देख गए तो क्या देखा, पेड़ों को किसने काट करके फेंक दिया, सब पूरे पेड़ सत्यानाश कर दिया। अब क्या खाएंगे, लेकिन कौन किया क्या क्या किसी को पता ही नहीं। तो अब 12 एक बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, खेती में भूख लग रही थी, अब क्या करें। फिर वापिस आए तो सोचा, रात भर सोचा अभी क्या करेंगे। तो बच्चे कहते कि चलो पापा जी हम नौकरी करते हैं। तो बच्चे नौकरी करने के लिए अलग अलग जगह पर गए और पढ़े लिखे बच्चे थे, अमेरिका पढ़े थे, उनको अच्छी नौकरी लग गई। तो बाप खुश हो गया। तो बाप कहता है मैं भी बैठे बैठे क्या करूं, वो भी नौकरी करने के लिए गया और काफी पगार आने लगा, पैसा आने लगा। और उन्होंने क्या क्या पैसा आया, फिर गाड़ी खरीद की, फिर प्लॉट खरीद किया, बहुत बड़ा बिल्डिंग बना दी और काफी साहूकार हो गए। और उसके बाद फिर वही मेहमान क्या करता है, उनको देखने के लिए जाता है, सोचता है कि देखता हूं क्या कहां गए वो लोग। जब देखने के लिए आए, जब देखा तो झोपड़पट्टी है ही नहीं वहां, तो सोचा यहां से भाग के चले गए होंगे। तो देखा एक नजदीक बहुत बड़ा बंगला बना है। तो जाकर के उनको पूछा, वो सिक्योरिटी वाला खड़ा था, भाई यहां एक परिवार रहता था, वो कहां गए, उनका नाम लिख करके लेके गए। हाँ बोला, ये बाबूजी शेठ जी अंदर है, मैं अभी बुलाकर लाता हूं। उनको लगता है शेठ जी, लगता है इनका ही बंगला है। तो जब वापिस आए तो आते हैं, उनका पांव छुआ, तो पांव छूते ही वो कहते हैं कि नहीं नहीं मैं पांव छूने के लायक नहीं हूं, मैंने ऐसा ही नहीं, मैंने आपका बहुत बुरा किया। तो कहा आपने क्या किया, तो आपके पेड़ों को मैंने काट करके फेंका था। अरे बोला इसीलिए तो आपका बहुत धन्यवाद, अगर आप पेड़ काट करके नहीं रखते तो आज हमारा कल्याण ही नहीं होता, तो इसीलिए आज ये बिल्डिंग वगैरह आपके कारण तो बनी। तो देखो उन्होंने उसका बुरा किया, लेकिन उस बुरे के पीछे कितना अच्छा कल्याण हो गया उनका। इसी तरह आपके जीवन में कोई समस्या क्रिएट करता है, उससे आपका क्या हो जाता है, और ही भला हो जाता है। तो इसीलिए जीवन में आने वाली समस्या के बारे में कभी भी चिंतन नहीं करना। जो जीवन में समस्या आते ही, समस्या आपको कुछ देने के लिए आते हैं, समस्या आपको आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। अगर आपके जीवन में माया भी आते हैं, माया किसी लिए आते हैं? माया आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। माया आपकी कौन है? बाबा की तो माया बेटी है, तो आपकी कौन लगी? आपकी तो बहन हो गई, क्योंकि आप बाबा के बच्चे हैं। तो बहन कभी भाई का बुरा नहीं करती, इसलिए माया इसीलिए आते हैं। जब आप योग नहीं लगाते, आप शांति से बैठते हैं, थप्पड़ लगाने के लिए आते हैं, कहते तुम संगम युग चल रहे, तुम शांति से बैठे हो, तुम योग लगाओ, तुम थोड़ा कुछ पुरुषार्थ करो। इसीलिए विघ्न समस्या में अलर्ट करने के लिए आते हैं, इसीलिए कभी भी घबराना नहीं है। इसीलिए भाग्यशाली आत्मा वो है जिसके सामने समस्या आते हैं, लेकिन समस्या के प्रति अपना दृष्टिकोण पॉजिटिव बनाओ। जो समस्या क्रिएट करते हैं उनके प्रति दृष्टिकोण पॉजिटिव बनाओ। एक एग्जांपल आपको सुनाता हूं। एक महाराष्ट्र के एक संत थे जिनका नाम था संत तुकाराम महाराज। वो बहुत भक्ति करते थे। तो एक बार क्या हुआ, गली के लिए सभी लोगों ने पकड़ करके उसको कहा कि तुम भक्ति वगैरह छोड़ो, क्योंकि उन्होंने एक नया पंथ चालू किया था, विठल पंथ। तो गांव के लोगों को पसंद नहीं था, तो भी किसी के कहने से वो नहीं छोड़ता था। तो गांव के गली के लोगों ने क्या किया, उस संत को पकड़ा, तुकाराम महाराज जी को, और उनको क्या किया, गले में सब्जी की माला पहना दी, बैंगन टमाटर आलू मटर सभी सब्जियां, और उनका मुंह काला करके उनके बाल उतार दिए और उनके ऊपर हल्दी का लेप लगा दिया, और वो संत तुकाराम महाराज जी को एक गधे पर बिठा दिया, और वो भी उल्टा मुंह करके बिठाया, और उस गधे को पकड़ करके क्या क्या गली गली में घुमाया। पीछे बच्चे लोग चिल्लाते थे तुकाराम महाराज जी की जय, और उसकी पूरी बदनामी कर दी। इतना भी नहीं छोड़ा, जहां उनकी पत्नी रहती थी वहां तक लाया, और जब उसकी पत्नी घर से बाहर आई तो पत्नी ने जब ये देखा क्या ये तमाशा चल रहा है, उसको बहुत इंसल्ट फील हुआ, उनको बहुत गुस्सा आया, और सभी को गाली देना शुरू करते हैं। जब गाली देना शुरू करते हैं, तुकाराम महाराज अपनी सब्जी की माला दिखा करके पत्नी को कहते हैं, इनको गाली क्यों दे रहे हैं, ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी लाकर दी है और कहा कि इनको गाली क्यों दे रहे हैं, मैंने तो अपना गांव देखा ही नहीं था, कामों में इतना व्यस्त रहता हूं, आज ये लोगों ने मुझे गली गली का घर घुमा करके लाया, इसलिए उनको गाली मत दो, उनको चाय पानी पिलाओ। और कहा कि इनको गाली क्यों दे रहे, मेरे सिर में फोड़े हो रहे थे, तो आज ये लोगों ने मेरे बाल उतार करके क्या किया, हल्दी लगाया, औषध किया, उनको गाली मत देना। और कहा कि जिस समय मेरी शादी हुई थी उस समय बारात नहीं निकली थी, आज ये लोगों ने मेरी क्या निकाल दी, बारात निकाल दी, इनको गाली क्यों दे रहे। और कहा कि जिस समय ये लोग मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे उस समय धूप बड़ी तेज थी, और तेज धूप में ये लोगों ने कुछ नहीं पहना था, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं आराम से गधे पर ऊपर बैठा था, मेरे पांव भी गर्म नहीं हुए, तो इनके लोग गाली क्यों देते हैं। तो देखो समस्या का उसने क्या किया, यह है समस्या का समाधान, यह है कारणों का निवारण। इसलिए हमें भी क्या करना है, कारणों का निवारण करना है, और जो कारणों का निवारण करेगा, समस्या का समाधान करेगा, उसको सहन करने का गुण आएगा, उसके अंदर सहन शक्ति आएगी, और जिसके जीवन में सहन शक्ति इस ज्ञान मार्ग में आते हैं, बाकी गुण ऑटोमेटिकली आते हैं। सहन शक्ति इस ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन है। जिसके अंदर सहन शक्ति आते हैं उसके अंदर शांति आते हैं, उसके अंदर धैर्यता आती है, उसके अंदर एकाग्रता आती है, उसके अंदर अंतर्मुखता आती है। और याद रखना है, सहन शक्ति योग का फाउंडेशन है। अगर योगी बनना है सहन शक्ति का गुण बड़ा जरूरी है, लेकिन आजकल ब्राह्मणों में सहन शक्ति की कमी होती जा रही है, और इसीलिए गुस्सा आता है, और इसीलिए योग नहीं लगता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये समस्या माया भी क्या कर रहे हैं, काम क्रोध रूप में नहीं आ रहे, वो आपको समस्या के रूप में आती है। और जब समस्या आती है तो फिर काम क्रोध लोग पैदा होते हैं, इसीलिए हमें क्या करना है, कारणों का निवारण करना है। और जिसके पास सहन शक्ति ज्यादा आते हैं, जो ज्यादा सहन करता है वो जीवन में बड़ा बनेगा। बड़ा बनना है सबको, अगर बड़ा बनना है तो कौन सा गुण चाहिए, सहन शक्ति का गुण चाहिए। जैसे दही बड़ा बड़ा बनाते हैं, दही बड़ा बड़ा कैसे बनता है, सबने खाया है दही बड़ा, दही बड़ा बड़ा कैसे बनता है उसकी, मैं किचन में सेवा करता हूं इसीलिए मुझे पता है उसकी विधि क्या है, बड़ा कितना सहन करता है तब जाकर के क्या बनता है, बड़ा बनता है। रात को उड़द की दाल को पानी में भिगोते हैं, सवेरे उसको क्या करते हैं, मिक्सी में पीसते हैं, तो पीसते समय उस दाल ने क्या किया, सहन किया। फिर आटे को लेकर के फेंटते रहते हैं, कब तक फेंटते हैं, उसको ग्लास लेंगे और ग्लास के अंदर क्या करते हैं, वो आटा फेटा वाटा डालते हैं, जब तक वो पानी के ऊपर तैरेगा नहीं तब तक उसको फेंटते हैं। अगर आटा डालते ही पानी में डूब जाता है उसको वड़ा नहीं बनेगा, वो सख्त बनेगा, वो नरम नहीं बनता हूं। इसीलिए क्या करते हैं, जब तक उसको फेंटते हैं जब तक पानी के ऊपर न तैरे, उसके बाद क्या करते हैं, फिर गरम गरम तेल के अंदर डालते हैं, तेल को भी सहन करता है, फेटा सहन किया, पीसा सहन किया, गरम तेल को सहन करता है। फिर बाद में क्या करते हैं, उसको वड़े को जब करारा बन जाता है, लाल बन जाता है, तो उस वड़े को लेकर के ठंडे पानी में डालते हैं, फिर ठंडे पानी से निकाल करके दोनों हाथों से दबाते हैं, तो दबाते समय भी क्या किया, उसने सहन किया। अगर बड़े को दबाते समय वो टुकड़े टुकड़े हो जाए, उसको मेहमानों को खिलाएंगे, उसको मेहमानों को नहीं खिलाएंगे, रिजेक्ट कर देते। जो दबाने के बाद जो साबुत रहता है वो खाने में अच्छा रहता है, और उसको ही मेहमानों को खिलाते हैं। और जो दबाने के बाद जो साबुत जो बनता है रहता है उसको क्या करते हैं, एक प्लेट में रखते हैं, फिर दही डालते हैं, फिर इमली की चटनी डालते हैं उसके ऊपर। इमली की चटनी में भी काला नमक, सफेद नमक, चीनी का बोरा, उसके बाद लाल मिर्ची, बहुत सारी चीजें होते हैं, काला नमक सफेद नमक सभी चीजें डालते हैं, और उसके बाद भुना हुआ जीरा डालते हैं, ऊपर से लाल मिर्ची डालते हैं, हरा धनिया डालते हैं, और तब बड़ा बन जाता है। और जब बड़ा कोई देखेगा प्लेट, उसको खाने की मजे आते हैं, हाँ बड़ा खा करके बड़े खुश हो जाते हैं कि आज बड़ा खाने में बड़ी मजा आई। उसको मजा तब आई, बेचारे इतना सहन किया, सब जब उसने सहन किया तब जाकर के वो बड़ा बना। और बड़ा बनाने की मेहनत होते हैं, ऐसे वैसे समय नहीं बनाते, कोई बड़े मेहमान आते हैं, बड़ा कोई त्योहार होता है दिवाली वगैरह तब बड़ा बनाते। इसी तरह आप सबको बड़ा बनना है, अगर बड़ा बनना है तो आपको भी क्या करना है पड़ेगा, ये बड़े बनने की सब प्रक्रिया सहन करनी पड़ेगी। कोई पिसता भी रहेगा, कोई फेंटता भी रहेगा, और कब तक पीटते रहेंगे, कब तक फेंटते रहेंगे, जैसे वड़े को जब तक पानी के ऊपर नहीं आया तब तैरना नहीं तब तक उसको फेंटते हैं, इसी तरह आप भी जब तक हल्के नहीं बनेंगे, जब तक ऊपर नहीं जाएंगे तब तक लोग फेंटते रहेंगे। यह है जब तक का जवाब, नहीं तो कई भाई बहने क्या बोलते हैं, ये मुझे कब तक तंग करते रहेंगे, ये मुझे कब तक परेशान करते रहेंगे, मुझे विघ्न कब तक आ रहेंगे, तब तक आएंगे जब तक ऊपर नहीं जाएंगे तब तक। इसलिए हमें क्या करना है, विघ्नों को सहन करना है, अंत तक आते रहेंगे। उसके बाद गर्म बातें भी आएंगी, ठंडी बातें भी आएंगी, कोई फुलाएगा भी, कोई महिमा करेगा फुलाएगा आपको, जो फुलाएगा वही दबाना भी शुरू करेगा, जब दबाएगा तो फिर दिल में लग जाता है, ये पहले तो मेरी महिमा करते थे और अभी मेरी ग्लानी करते हैं, तब दिल में दर्द होता है, तब थोड़ा टूटना शुरू करते हैं। लेकिन नहीं, ये दबाना दबाना नहीं, लेकिन ये भी एक बड़े बनने की प्रक्रिया है। इसीलिए अगर कोई दबाता है, कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं देता, तो भी डरना नहीं है, तो भी टूटो नहीं, तो भी सोचो कि मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। दबाने के बाद भी छोड़ेंगे नहीं, फिर नमक मिर्ची लगाना शुरू करेंगे, नमक मिर्ची अर्थात आपकी बातों को उल्टी सुल्टी सुना करके बड़ों को सुनाएंगे, आपकी कंप्लेन करेंगे, कहेंगे मैं तो ऐसा है ही नहीं, तो भी मेरे बारे में ऐसा ये सुना रहे, सुनाएंगे, तब भी सहन करना है। और जब आप इस सभी प्रोसेसर को सहन करेंगे तो अंत में क्या कहे जाएंगे, बड़े, तब आप बड़ा बन सकते हैं। इसलिए आज ब्रह्मा बाबा इतना बड़ा बना, दादियां बड़ी बनी, किसके कारण बड़ी बनी, उन्होंने सहन नहीं किया। आज कहानियां सुनो ना, कितनी सारा सहन किया। इसलिए हमें भी क्या करना है, सहन करना है। कईयों को क्या लगता है, बाबा बड़ा अच्छा है लेकिन परिवार, ब्राह्मणों के साथ रहना, ब्राह्मणों के संगठन में रहना बड़ा मुश्किल है। इनकी बात, ये ज्ञानी होने के बाद भी ऐसा करता है, ज्ञानी ऐसा करता है तब जाकर के टूटते होता है। लेकिन नहीं, हमें हर बात को क्या करना है, हिसाब किताब है। ब्राह्मणों के तो बहुत हिसाब किताब आपस में, सबसे ज्यादा हम किसके साथ रहे हैं, ब्राह्मणों के साथ तो रहे। इसीलिए सहन करके उसको चुप्त करो, अगर सहन नहीं करेंगे तो वो हिसाब किताब विनाश काल में चुप्त करना पड़ेगा। इसीलिए अगर ब्राह्मण कोई कहता है ये भी आपको सहन करना है, टूटना नहीं है, दिल शिकस्त नहीं होना है। एक बार कहते हैं एक जगह पर एक लोहे का लोहार था और उसी के बाजू में एक सोने वाला दुकान था, सोनार भी था। तो लोहार क्या करता है, बड़ा हथौड़ी लेकर के वो लोहे को पीटता रहता है, उसका आवाज आता है ना, घन घन करके आवाज आता है। तो एक दिन क्या होता है, लोहे का टुकड़ा टूट करके वो सोनार के दुकान के पास गया, तो सोने का टुकड़ा लोहे के टुकड़े को पूछता है, क्या बात है भाई, आप बहुत जोर जोर से चिल्लाते हो, उसका आवाज आता है ना। तो लोहे का टुकड़ा सोने के टुकड़े को बोलता है, चिल्लाऊ नहीं तो क्या, तुमको तो पराई मारते, मुझे तो अपने ही मारते, इसलिए मैं चिल्लाता हूं। क्योंकि लोहे को कौन मारता है, लोहा मारता है, और सोने को कौन मारता है, सोने का हथौड़ा, सोने वाला जो सोनार होता है उसके बाद हथौड़ा किसका होता है, लोहे का होता है। तो कहता है तुमको तो पराई मारते हैं लेकिन मुझे अपने ही मारते, इसीलिए मैं चिल्लाता हूं। तो ये संसार का नियम है, अपने ही जिसको आपने बढ़ाया, आगे किया, पढ़ाया लिखाया, सहयोग किया, वही आपको परेशान करेंगे, संसार का नियम है। इसीलिए कभी भी टूटना नहीं है, यही तो बड़े बड़े बनने की निशानी है। आज शिव बाबा ने क्या क्या, जिस शिव बाबा ने हमें कितना पढ़ाया, संगम युग में कितनी पालना की, ज्ञान युग सिखाया, और जब हम सतयुग में गए तो क्या किया, ऐसे उपकार करने वाले बाबा को, पढ़ाने वाले बाबा को, कितनी दया करने वाले बाबा को भूल गए। उस समय बाबा को लगा ये कितने मतलब के लोग हैं, जब दुखी थे मैंने इनको पढ़ाया लिखाया और इनका मतलब पूरा हो गया, सुखी बन गए, मुझे भूल गए, अगले कल्प में इनको कभी देवता नहीं बनाऊंगा, सोचा। और आज हम क्या करते हैं, कहते देखो ये मुसीबत में था, मैंने इसको नौकरी लगाई, मुसीबत से निकाला और अब सुखी बन गया, मुझे याद नहीं करता, इसीलिए उसे नफरत करते हैं। लेकिन नहीं, इतना ही नहीं, जब द्वापर में गए उसी बाबा को क्या क्या गाली देना शुरू किया, वो भी ढोल बजा बजा करके, हे भगवान तुम कुत्ते में हो, तुम बिल्ली हो में हो, तुम टक्कर में हो, कितनी गाली दिया। जिस बाबा ने हमारे ऊपर उपकार किया, जिस बाबा ने हमारे ऊपर दया की, पढ़ाया, देवी देवता बनाया, उसको गाली देना शुरू किया, क्या बाबा ने उस गाली को सुना नहीं होगा, सुना। बाबा के पास इतनी पावर थी लेकिन बाबा ने अपनी पावर को नीचे छोड़कर के जलाया नहीं, और यह भी नहीं सोचा कि अगले कल्प में इनको देवता नहीं बनाऊंगा, और यह भी नहीं सोचा जब मैं नीचे जाऊंगा जिन्होंने मुझे गालियां दी मैं जाते उनके गले दबाऊंगा, सोचा। वही बाबा जब नीचे आता है तो क्या करता है, ग्लानी करने वालों को गले लगाता है, जिन्होंने गाली दी उनको ही देवता बनाता है, उनको ही पढ़ाता है, दूसरों को नहीं पढ़ाता। इसीलिए बाबा केवल एक ज्ञान सुनाता नहीं, बच्चे गाली देने वालों को गले लगाओ। बाबा ने करके दिखाया है, आज था ना वरदान, सैंपल बनो, एग्जाम्पल बनो। तो ब्रह्मा शिव बाबा ने पहले किया, गाली देने वालों के साथ कितना अच्छा व्यवहार किया, लेकिन आज हम क्या करते हैं, गाली देने वालों को, समस्या क्रिएट करने वालों को 15 दिन उसे बात नहीं करते, इधर मुकर के जाएंगे। आज बाबा ने ऐसा किया, जब मधुवन में बाबा से मिलने के लिए जाते हैं तो बाबा जब सामने कोई जाता है तो कहता है यार तुम चले जाओ, तुमने बहुत गालियां दी थी, तुम जाओ, ऐसा बोलता है। तो बाबा का कितना अंदर से प्यार है हर एक के साथ, अगर बाबा ने उस बातों को दिल में रखता तो बाबा का प्यार अनुभव होता। तो इसीलिए जो समस्या क्रिएट करता है उसके अंदर, उसके प्रति अंदर से रहम की भावना हो, क्षमा की भावना हो, तब वो समस्या क्रिएट करने वाला भी आपके ऊपर कुर्बान हो जाएगा, वो परिवर्तन हो जाएगा, और उससे ही आप वाइब्रेशन फैला सकेंगे, वायुमंडल बना सकेंगे। इसीलिए अभी हमें इसी भट्टी से समस्या का क्या करना है, समाधान करना है, कारणों का निवारण करना है, और बिल्कुल हम हल्के बनना है। और जब हल्के बनेंगे तब योगी बन सकेंगे, समस्या का कोई चिंतन नहीं करना। अगर आपका मन किसी के बारे में कहता है ये व्यक्ति है ही ऐसा, तो मन को क्या समझाओ, हे मन तुम भगवान से समझदार बने हो, भगवान तो कहता है मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, और तुम ऐसे व्यक्ति के बारे में ऐसा सोच रहे। इसलिए हे मन तुमने मुझे बहुत धोखा दिया, तुम हमें मुझे धोखा नहीं देख सकते हो, इसलिए तुम सबके लिए अच्छा सोचो। इसलिए हमें क्या करना है, समस्याओं का समाधान करना है। शिव बाबा के अंदर सबसे ज्यादा सहन शक्ति है, ब्रह्मा बाबा के अंदर भी सहन शक्ति है, और इसलिए बाबा नंबर वन पूजनीय बने। इसलिए जिसके पास सहन शक्ति ज्यादा है वही पूजनीय बन सकता है, लेकिन सहन शक्ति का गुण आने के लिए समस्या का समाधान और कारणों का हमें क्या करना है, निवारण करना है। इसके बाद आप जब भी योग लगाने के लिए बैठेंगे अब आकर के, तो जो जो आपके लिए समस्या क्रिएट करने वालों के प्रति आप क्या करेंगे, शुभ भावना रखेंगे और उनको धन्यवाद देंगे, तो उनको कहो कि अगले कलप में भी आप तंग करने के लिए जरूर आना, और आप लोगों के तंग करने के कारण हमें वैराग आया, हमारी शांति भंग हो गई, हम इसीलिए शांति ढूंढते ढूंढते हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में पहुंचे, तो हमें कितना अच्छा ज्ञान, कितना अच्छा परिवार मिला, तो इसलिए आप जरूर तंग करते रहना, आपका हमारे से इसलिए थैंक्स, आपके बारे में मेरे मन में कुछ नहीं। तो ये आपकी वाइब्रेशन उस तंग करने वाले के पास जाएगी, और वो क्या करेंगे, आपको फिर कहेंगे अरे मैंने उसको बहुत तंग किया, मैं उसको अभी कभी तंग नहीं करूंगा, तो वो व्यक्ति भी आपके लिए बदल जाएगा, उसकी भावना भी बदल जाएगी, जैसा आप सोचते वैसी उसकी भावना भी बदल जाएगी, और तब जाकर के आप हल्के बन सकेंगे। इसलिए कारणों का निवारण और समस्या का समाधान ये बहुत जरूरी है, इसके तो बहुत एग्जाम्पल्स है, ये तो 3-4 घंटा भी क्लास करो तो भी लंबा है, लेकिन यही पूरा करेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर आगे का भी कार्यक्रम है, और मेरे जीवन के भी कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, केवल मैं आपको सुना ही नहीं रहा हूं कि कारणों का निवारण करो, तो मैं कभी बीच में वो भी एग्जाम्पल कभी सुनाऊंगा। मेरे जीवन में जितनी समस्या आई उन समस्या ने मुझे आगे बढ़ाया। आप लोगों ने वैसे मेरा अनुभव भी पढ़ा होगा ज्ञानामृत में, कैसी कैसी मेरे जीवन में समस्या आई, तो सचमुच उस समस्या को मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद भी मेरे जीवन में बहुत समस्या आई, लेकिन उसी समस्या ने मुझे महारथी बनाया। इसलिए समस्या और कारण ये महान बनाते हैं, इसलिए आप कारणों का निवारण करो, समस्या का समाधान करो, तब आप बंधन मुक्त बन सकते हैं, तब जीवन मुक्त बन सकते हैं, तब आपकी अशरीरी अवस्था बन सकते हैं, तब आपके संकल्प समर्थ बन सकते हैं। इसलिए इसी क्लास से हमें यही प्रेरणा लेनी है, हमें कारणों का निवारण करना है, हम दूसरों को दोषी नहीं बनाना है, क्योंकि हमारा भी कोई ना कोई जन्मों का दोष जरूर है, और इसीलिए अभी हमारे समस्या क्रिएट करते हैं, क्योंकि संसार गोल है। अगर एक तरफ से कोई थप्पड़ मारता है, दूसरा जब तक थप्पड़ नहीं मारेगा तब तक दोनों का हिसाब किताब चुक्त नहीं करेगा और तब तक मुक्त नहीं बनेंगे। अगर कोई आपका पैसा लेके जाता है और वो भी वापिस जब तक नहीं देगा तब तक वापिस नहीं जा सकता। इसलिए इस संसार की कोई भी घटनाएं जो भी होते हैं कर्मों के आधार से होते हैं, इसलिए कर्म गति को हमें समझना है और जिससे हमारे जीवन में हमारा दिमाग सदा हर परिस्थिति में क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। तो इसलिए जो भी आपको अलग अलग एग्जांपल्स दिए, चाहे वो आगरा का एग्जांपल दिया, मंथरा का एग्जांपल दिया, चाहे वो भीम का एग्जांपल दिया, तो उस एग्जांपल को भी याद रखे कि दही बड़े का एग्जांपल दिया, तो ये आज का क्लास आपको सदा के लिए याद रहेगा। ठीक है, ओम शांति।
तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो, ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो, मीठी बातों पे बिंदु धरो, मीठी बातों पे बिंदु धरो, बिंदु बनो उसे याद करो, बिंदु बनो याद करो, ये तीन बिंदु मत बिसरो।